الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے مقدس مہینوں میں عبادت کا طریقہ. آپ جانتے ہیں کہ رجب، شعبان، رمضان یہ وہ مبارک اور مقدس مہینے ہیں کہ جس میں مسلمان دیگر مہینوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی ان مہینوں کی فضیلت آئی ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان مہینوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. رمضان المبارک کی فضیلت تو ایک الگ ہے، شعبان اور رجب ان کی بھی فضیلتیں آئی ہیں، اور مسلمان چاہتے ہیں کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. تو ہم نے اسی لیے آج اس چیز کو اپنا عنوان سخن بنایا کہ پتہ چلے کہ کس طرح ان مہینوں میں عبادت کی جائے. آئیے ذرا سا غور کریں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اب اس میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ جو بھی کام انسان کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مقصد، کوئی ٹارگیٹ نہ ہو تو پھر اس کے وہ کام کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یعنی ایک کام آپ کر رہے ہیں اور بے مقصد ہو، بے معنی ہو، کوئی چیز آپ حاصل نہیں کرنا چاہ رہے اور پھر آپ کر رہے ہیں، تو وہ چیز جو ہے، وہ کام جو ہے بالکل بے معنی، بیکار ہو جاتا ہے. مثلاً یہ کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ عبادت ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، تو اس کے کوئی نہ کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ وظیفہ اس نے پڑھا، نماز پڑھی، نوافل پڑھے، دیگر چیزیں، روزے رکھے، نفلی روزے یا دیگر چیزیں اس نے کی، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ کاروبار کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، خوشحالی کے لیے اور دیگر مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور عام طور پر جب دیکھا گیا ہے تو شادی بیاہ کے لیے، اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، ترقی کے لیے، اگر وہ جاب کر رہا ہے تو اس میں ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا کوئی کام وہ کرتا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن بزرگان دین، اولیاء کاملین نے یہ بتایا کہ آپ عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی مقصد آپ کے پیش نظر نہ ہو کہ یہ وظیفہ میں اس تعداد میں پڑھوں تو مجھے یہ کامیابی حاصل ہو جائے، میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میرے ہاں اولاد ہو جائے، یا کاروبار میں ترقی ہو جائے، یا کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے. اصل چیز کیا ہے کہ مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن دیگر کام ظاہر انسان کو چاہیے، شادی بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، کاروبار میں ترقی بھی چاہیے، اور لوگوں کی نظروں میں عزت، وقار، یہ تمام چیزیں چاہیے. بزرگان دین نے فرمایا ایک چیز آپ کر لیں، تمام چیزیں اسی کے تحت ہیں، اور وہ چیز ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. ہم نے کوئی وظیفہ پڑھا، نوافل پڑھے، کوئی عبادت کی، اس میں ذہن میں کیا ہو، مقصد کیا ہو، اے رب تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کی سند ہمیں عطا فرما دے، اپنے محبوب بندوں میں ہمارا نام شامل فرما دے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ مقصد اپنے دل میں رکھیں گے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میں وظائف پڑھ رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو جب رب راضی تو جگ راضی، یعنی تمام چیزیں اسی کی رضا پر موقوف ہیں. آپ کتنا ہی زور لگا لیں، کتنی ہی محنت کر لیں، امتحان میں کامیابی تب ہوگی جب رب راضی ہوگا، اولاد تب ہوگی جب رب راضی ہوگا، کاروبار میں ترقی تب ہوگی جب خالق کائنات راضی ہو. तो जब ये दुनियावी तमाम काम अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा पर मौकूफ़ हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम सिर्फ उसी की रज़ा हासिल करें और अपने जहन के अंदर यही रखें कि ये जो इबादत हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। अगर इंसान के जहन में ये हो और उसके बाद दुआ भी यही हो, तो फिर आप देखें कि दीगर काम ये खुद ब खुद हो जाएंगे, क्योंकि ये तमाम काम अल्लाह ताला की रज़ा पर मौकूफ़ हैं। हम कहते हैं ये अफसर राज़ी हो जाए तो तरक्की हो जाए, ये फला आदमी राज़ी हो जाए तो मुझे पैसे मिल जाएं, ये आदमी राज़ी हो जाए तो मेरे ये काम जो बिगड़े हुए हैं इसकी मर्ज़ी से ये काम हो जाए, इसके कहने से ये काम हो जाए। ये तमाम दुनिया वालों की रज़ा हासिल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए। जब अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा हासिल होगी, ये पूरी कायनात और इसमें बसने वाले ये तमाम चीज़ें ये सब खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगी। तो अब इबादत का तरीक़ा क्या है कि सबसे पहले मकसद, एक टारगेट हमारे सामने हो, मकसद हो, और मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा। यही हमारे मशाइख तरीक़त ने बताया, यही बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने बताया। उन्होंने किसी दुनियावी काम के लिए इबादत नहीं की, किसी दुनियावी काम के लिए वजीफ़ा नहीं पढ़ा। जितने वज़ाइफ़ पढ़े, जितनी इबादत की, जितनी रियाजत की, जितना तकवा परहेजगारी इख्तियार किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए की। और जब रब उनसे राज़ी हो गया तो पूरी कायनात राज़ी हो। तो अब पहली चीज़ आपने ये समझी कि इबादत करने के लिए हमारा मकसद, हमारा मंशा, हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा। ठीक है, अब ये तो है पहली चीज़। अब आइए दूसरी चीज़, वो है इबादत में परहेज़। अब आप कहेंगे कि ये परहेज़ क्या चीज़ है? परहेज़ तो होता है किसी मर्ज में, यानी आदमी को बुखार है तो कह दिया ठंडे पानी से परहेज़ है, नज़ला खांसी है तो खट्टी चीज़ों से परहेज़ है, ठंडी चीज़ों से परहेज़ है। ये परहेज़ आप इबादत में कहाँ से ले आए? नहीं, इसमें भी परहेज़, और वो क्या है? अब आप देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इबादत के असर को ज़ाया कर देती हैं, जो असरात होने चाहिए ना उसको ज़ाया कर देती, ख़त्म कर देती। जब इंसान कोई वजीफ़ा पढ़ता है, मसलन अल्लाहुस्समद है, या हय्यू या कय्यूम है, या अल्लाहू या रहमानू या रहीम है, दीगर वज़ाइफ़ हैं, क़ुरान करीम की सूरतें हैं, सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, सूरह नास है, मुख्तलिफ़ सूरतें, सूरह मुज़म्मिल है, जिनको बुज़ुर्गान दीन ने अपने मामूलात में शामिल रखा और उनके ज़रिए दरजात व मरातिब उन्होंने हासिल किए, उनकी ज़बान में असर पैदा हुआ। तो ये तमाम सूरतें, ये तमाम वज़ाइफ़ अल्लाह तबारक व ताला के मुक़द्दस नाम, अस्माए इलाही, ये जितने भी हैं, जब भी इंसान पढ़ेगा, कोई भी शख्स पढ़ेगा, तो उसकी ज़बान में असर पैदा होगा। जितनी देर पढ़ेगा उतनी देर इबादत में शुमार होगी, उतना वक्त इबादत में शुमार हो, और जितनी देर पढ़ेगा झूठ से, गीबत से, चुगली से, दिल आज़ारी से, फहाश गोई से, इन तमाम चीज़ों से बचा रहेगा। अब क्या होता है, इबादत में परहेज़ क्यों रखा गया और परहेज़ है क्या? मिसाल ये समझें कि आप एक डॉक्टर के पास गए और आपने जाकर कहा कि जी मुझे नज़ला है, खांसी है, बुखार है, सर में दर्द है। उसने क्या किया? एक तो उसने लिखा नुस्खा और एक लिखा परहेज़। उसने कहा ये गोली है, दो सुबह खानी है, दो दोपहर को, दो शाम को, या कैप्सूल, कोई भी दवा आपको दे दी। आपने कहा ठीक, लेकिन इसके साथ साथ ठंडे पानी का परहेज़ है, खट्टी चीज़ों का परहेज़ है, चिकनाई का परहेज़ है, दीगर चीज़ें जो इसके इस मर्ज़ को बढ़ाती हैं, वो तमाम चीज़ें उसने एक पूरी लिस्ट आपको बना के दे दी। अब आपने क्या किया, दवा तो आपने खाई लेकिन साथ साथ ठंडा पानी भी पिया, दवा तो शाम को भी खाई लेकिन खट्टी चीज़ें भी आपने खाई, यानी परहेज़ किसी किस्म का नहीं किया और दवा आप खाते रहे। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने तो दवा पूरी तरह खाई, जो गोलियां आपने दी सुबह दोपहर शाम ये सब मैंने खाई। उन्होंने कहा परहेज़ किया? हाँ नहीं, परहेज़ तो नहीं किया। कहा अगर आप परहेज़ करते और दवा ना खाते तो आधा मर्ज तो वैसे ही दूर हो जाता। लेकिन दवा खाते रहे, परहेज नहीं किया, तो जो बद परहेजी थी उसने दवा के असर को ख़त्म कर दिया। फ़ायदा हुआ, लेकिन जो फ़ायदा होना चाहिए था, जो मर्द जड़ से उखड़ जाता, ख़त्म हो जाता, वो नहीं हुआ। बेन ही इसी तरह मिसाल है नमाज की, रोज़े की, हज ज़कात की और तमाम इबादत की। इबादत आप करें, झूठ का परहेज़ है, गीबत का परहेज़ है, चुगली का परहेज़ है, किसी की दिल आज़ारी का परहेज़ है, फहज गोई का यानी गालियों का, गंदी ज़बान इस्तेमाल करने का परहेज़ है, ये तमाम चीज़ों का परहेज़ है। अब आपने क्या किया, आपने रोज़ा रखा, साथ साथ गालियाँ भी दे रहे हैं, आपने नवाफिल पढ़े या अल्लाह तबारक व ताला के किसी इस्म पाक का विर्द किया, या कोई दुआ जैसे दुआ हिज़्ज़ुल बहर, दलाइलुल खैरात, दुरूद ताज, दीगर चीज़ें हैं, ये सब आपने पढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ झूठ बोलते रहे, गीबत करते रहे, चुगली खाते रहे, लोगों की दिल आज़ारी करते रहे, फाहिश गोई करते रहे, तो क्या हुआ? ये है इबादत में बद परहेजी, यानी जिन चीज़ों से मना किया था वो तमाम चीज़ें आप करते रहे। तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो इन असमाए इलाहिया का या दुआएं जो थीं उनका असर होना चाहिए था वो ख़त्म हो गया। झूठ ने ज़बान का असर ख़त्म कर दिया, यानी इधर आपने एक दुआ पढ़ी, ज़बान में असर पैदा हुआ, और उधर झूठ बोला, असर ख़त्म हो गया। इधर आपने नवाफिल पढ़े, दुरुताज पढ़ा, दीगर चीज़ें पढ़ी, उधर गीबत की, चुगली की, गालियाँ दी, लोगों की बुराइयाँ की, असर ख़त्म हो गया। यानी दवा आप खा रहे हैं, साथ में बदपरहेजी भी कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए अक्सर लोग जब आते हैं हमारे पास और आकर ये कहते हैं कि जी फला वजीफा आपने बताया, हमने तो 40 दिन पढ़ा, असर ही नहीं हुआ। अब इसमें दो चीज़ें हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ये दोनों चीज़ें कर रहा होता है जो हमने आपके सामने बयान की, यानी दवा और बदपरहेजी, वज़ाइफ भी और साथ साथ ये गीबत भी, चुगली भी और दीगर चीज़ें जो हैं ये भी साथ साथ कर, उससे क्या है कि उस वजीफे का असर ख़त्म हो रहा, जो असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ज़बान का असर ख़त्म हो गया, जब असर नहीं तो दुआएं कबूल नहीं हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से देर होती है। सरकार ने फरमाया हदीस शरीफ, जिसका मफहूम ये है कि इंसान दुआ मांगता है और इंसान जल्दबाज है, वो चाहता है आज ही कबूल हो जाए, जबकि खालिक़े कायनात के इल्म में ये है कि ये बंदा जो चीज़ आज तलब कर रहा है वो एक महीने बाद इसके लिए बेहतर है, या एक साल के बाद बेहतर है, या एक हफ्ते के बाद बेहतर है। ठीक है ना, हम तो चाहते हैं आज हमें, हम मांगे आज हमें मिल जाए, खालिक़े कायनात के इल्म में है ये चीज़ कब, किस वक्त, किस लम्हे इसके लिए बेहतर। तो वो क्या करता है, उस दुआ को महफूज कर लेता है, जो हमने दुआ मांगी ना, रायगा नहीं गई, उसे महफूज कर लिया गया। यह हदीस शरीफ का मफहूम मैं आपके सामने बयान करूँ, उस दुआ को महफूज कर लिया गया और उसके बदले अजर नामा आमाल में लिख दिया गया। इससे एक बात यह भी पता चली कि हमें बददिल नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए कि हमने इतनी दुआएं मांगी कबूल नहीं हुई। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो वह महफूज है, उसके बदले अजर आपके नामा आमाल में लिखा जा रहा है। और जब खालिक़े कायनात चाहता है कि ये चीज़ इसके लिए इस वक्त बेहतर है, उसी वक्त अता फरमा देता। तो इससे ये भी पता चला कि दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से तलब करते रहो, मांगते रहो, पुकारते रहो, जब उसकी रहमत जोश में आएगी अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुम्हें अता फरमा दे। तो कहने का मकसद क्या है, इबादत अगर आप करते रहे और साथ साथ बदपरहेजी, बदअमली अगर ये होगी तो फिर इबादत कबूल नहीं होगी, उसकी कबूलियत में भी देर हो जाएगी और उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। अक्सरियत लोगों की इसीलिए इन वज़ाइफ से फ़ायदा हासिल नहीं कर पाती कि वो दोनों चीज़ें कर रहे होते, इबादत भी कर रहे हैं, बदपरहेजी भी कर रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जो हमने आपके सामने बयान किया, इसको बड़े गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि इबादत में बदपरहेजी नहीं होनी चाहिए। और बदपरहेजी यही है कि हम उन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोक लें जिससे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। उसके बाद आप निहायत खुशू और खुजू के साथ इबादत करें, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। अब आइए तीसरी चीज़, इबादत में इस्तेकामत। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अहमियत की चीज़। एक वजीफा आपको बताया गया, आपने पढ़ा, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के अंदर एक शौक़ पैदा होता है, किसी को देखा दलाइलुल खैरात पढ़ते हुए, जी मैं दलाइलुल खैरात पढ़ूँगा, किसी को देखा दुआएज़ुल पढ़ते हुए, मैं भी ये पढ़ूँगा, ये दुरूद ताज पढ़ता है मैं भी पढ़ूँगा, ये फ़ला दुरूद पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूँगा, या ये कि मैं सब कुछ पढ़ूँगा, ये भी नामुमकिन है। एक आदमी सारी चीज़ें भी नहीं पढ़ सकता, और एक आदमी एक ही चीज़ अगर गैप करके, यानी उसके अंदर एक दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया, इस तरह पढ़े तब भी फ़ायदा नहीं हो। इसीलिए आप देखें कि ये जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, किसी एक चीज़ के आमिल होते थे। कोई दुआ हिज़ुल बहर का आमिल, कोई दलाइलुल खैरात, कोई अल्लाह समद, कोई सूरह मुजम्मिल का, कोई सूरह इखलास का, मुख्तलिफ सूरतें हैं ना, एक चीज़ को उन्होंने अपना लिया और इस्तेकामत के साथ पूरी ज़िंदगी उस पर अमल करते रहे। उसके ज़रिए ख़ुद भी रूहानियत हासिल की, दूसरों को भी रूहानियत पहुँचाई, ख़ुद भी फ़ायदे हासिल किए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। एक मरतबा सूरत पढ़ के दम कर दी, फ़ायदा हो गया, बीमारी दूर हो गई, मुश्किलात दूर हो गई, तमाम चीज़ें हल हो गई, तमाम मसाइल हल हो गए एक ही सूरत। वजह क्या थी? एक चीज़ ली और उस पर इस्तेकामत के साथ कायम रही। ऐसा नहीं किया कि 10 चीज़ें एक दिन पढ़ी और दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। अक्सर लोगों की आदत यही है, और राह तरीक़त में इस्तेकामत बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग आते हैं, जी हम ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, सारी चीज़ें एक दिन पढ़ ली और दूसरे दिन सारी चीज़ें छोड़ दी, तो ये तो बुजुर्गान दीन का तरीक़ा नहीं। उनका तरीक़ा क्या है? एक चीज़ आप ले, एक सूरत ले कुरान करीम की, या कोई अल्लाह तबारक व ताला के मुक़दस बाबरकत नामों में से कोई इसमें पाक, जैसे अल्लाह समद, या कोई भी चीज़ आपके शेख ने आपको बताई, इस्तेकामत के साथ उस पर अमल करें, मुसलसल पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आप देखें कि पानी का कतरा, उसकी कोई हैसियत नहीं, पत्थर पे गिरता है, मुसलसल गिरता है, उसके अंदर गड़ा पैदा कर देता। तो जब एक पानी का कतरा पत्थर के सामने, उसकी कोई हैसियत नहीं, मुसलसल गिरने की वजह से उसके अंदर गड़ा पैदा कर सकता है, तो इंसान किसी भी अमल को बार बार करके अपने अंदर रूहानियत क्यों नहीं पैदा कर सकता? यकीनन कर सकता, ये सिर्फ इस्तेकामत की कमी की वजह है। अक्सर लोगों को देखा कि एक दिन सारी चीज़ें पढ़ ली, दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, या एक दिन एक चीज़ पढ़ी, दूसरे दिन दूसरी चीज़, तीसरे दिन तीसरी चीज़, ना ये पूरी हुई, ना वो पूरी हुई, ना ये पूरी, किसी में पूरे नहीं। इसलिए राह सलूक तय करने वालों के लिए हमारी ये हिदायत है, बल्कि हमारी क्या, बुजुर्गान दीन की ये हिदायत है कि जो भी चीज़ आप लें, इस्तेकामत के साथ आप पढ़ें, तब उसके अंदर फ़ायदा होगा, तब आपके अंदर रूहानियत पैदा होगी, और ये कल्ब जो है गुनाहों की आलूदगी से पाक और साफ होगा। तो तीसरी चीज़ क्या है? इबादत में इस्तेकामत। जो भी आपने वजीफ़ा अपनाया, चिल्ला आपने किया, किसी भी दुआ का, किसी भी चीज़ का, इस्तेकामत के साथ उसे आप पढ़ते रहिए। अब आप देखें, बुजुर्गान दीन ने तादाद मुकर्रर की हैं, 40 दिन ये अमल करना है। ये भी हो सकता था कि बुला के बताया भाई ये सारी उम्र पढ़ते रहो, नहीं, दिन की कैद लगाई। क्यों? उसमें फ़ायदा क्या है और वजह क्या है? 40 दिन तक वो इंसान इस चीज़ का पाबंद है कि मुझे 40 दिन ये पढ़ना है। चिल्ला जो है, चिल्ला क्यों कहा जाता है? 40 दिन, 40 का अदद, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इसीलिए इस अदद को बुजुर्गान दीन ने चिल्ले के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह तबारक व ताला के किसी भी इसमें पाक का वर्द करने के लिए मुरीद को बिठा दिया। 40 दिन एक कमरे में बैठकर तर्क हैवाना जलाली जमाली के साथ, तमाम परहेज के साथ, तुम्हें यह अमल करना है, ये वजीफा पढ़ना। तो कैद इसीलिए लगाई, ये जो तादाद है ना वजाइफ की, अगर ना होती तो क्या होता? पढ़ते रहे भाई, जिसको चाहे सूरह इखलास पढ़ ले, जिसको चाहे अल्लाह सुमत पढ़ ले, जो चाहे जिस तादाद में पढ़ ले। ऐसा नहीं, हर वजीफे की तादाद, उसका वक्त, उसका टाइम, उसके पढ़ने की कैफियत, ये तमाम चीज़ें बुजुर्ग दीन ने रखी। इसीलिए कि दीन इस्लाम डिसिप्लिन, नज्म और जब्त कायम करता। पांच नमाज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने फ़र्ज़ की, यह भी हो सकता था। खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुसलमानों से कह दीजिए पांच नमाज़ें हमने फ़र्ज कर दी, पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ ली। यह भी मुमकिन था, लेकिन नहीं। ईमान इस्लाम मुसलमानों को डिसिप्लिन, नज्म और जब्त का पाबंद बनाता। फजर का वक्त ये है, जोहर का ये है, असर का ये है, मगरिब का ये है, ईशा का ये, नमाज़ों के औकात मुकर्रर किए गए इसीलिए कि हमें पाबंद किया जाए। वरना हम फजर रात में पढ़ लेते, ईशा सुबह पढ़ लेते, जोहर कभी पढ़ लेते। नहीं, तमाम औकात मुकर्रर किए गए, ये इसका वक्त है और इस वक्त में अदा करोगे तो अदा है, इसके बाद करोगे तो कज़ा है। इस वक्त पढ़ोगे तो सवाब है और इस वक्त पढ़ोगे तो अजर सवाब में कमी है। एक नमाज दूसरी नमाज के वक्त पढ़ोगे तो कज़ा हो जाएगी, और जो नमाज जिस वक्त पढ़ोगे, जो उसके पढ़ने का वक्त है, तो उसी में अदा होगी, उसी में सवाब है, उसी में अजर है। ये सारी चीज़ें बयान कर दी। इसी को देखते हुए बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने इन वज़ाइफ़ की तादाद भी मुकर्रर की, इनके औकात भी, इनके पढ़ने का तरीक़ा भी, इनका मकसद भी, ये सारी चीज़ें बयान कर दी। तो अब आप देखिए कि इबादत में इस्तेकामत और पाबंदी जब होगी तभी इंसान कुछ हासिल कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ हासिल नहीं कर सकता। अक्सर लोग राय सलूक तय करने के लिए आते हैं और दावे करते हैं कि हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, लेकिन जब देखो तो कुछ हासिल नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक चीज़ एक दिन पढ़ी, उसके बाद छोड़ दी, फिर चार दिन के बाद पढ़ी, फिर छोड़ दी। इस तरह तो आप सारी उम्र करते रहें, पढ़ते रहेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो रूहानी तरक्की, जो खुशू और खुजू, जो कल्ब की सफाई, तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब, वो उसी सूरत में होगा जब उस पर इस्तेकामत मुदावमत होगी, और अगर नहीं होगी तो वो चीज़ हासिल नहीं होगी। बुजुर्गान दीन की हयात मुबारक, उनकी ज़िंदगी, उनके मामूलात, ये सब हमारे लिए कसौटी है। किस तरह उन्होंने इबादत और रियाजत की, मुजाहिदा किया, चिल्ला कशी की, नफ्स कुशी की, और एक चीज़ को लिया, उसी पर इस्तेकामत के साथ कायम रहे, इबादत का मकसद भी रखा, इबादत में तमाम चीज़ों से परहेज़ भी किया, उसमें इस्तेकामत भी इख्तियार की। नतीजा ये निकला कि उनके अस्माए मुबारक, उनके नाम आज भी ज़िंदा हैं, क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उनकी शख्सियत में ऐसा असर पैदा कर दिया कि जो उनके करीब बैठ गया वो भी कामयाब हो गया, जो उनकी महफिल में बैठ गया वो भी कामयाब हो गया, जिससे जो कुछ कह दिया वही हो गया, जो ज़बान से निकल गया वही हो गया। तो ये उस वक्त हुआ कि जब इबादत का एक मकसद था, इबादत में तमाम चीज़ों से परहेज था, इबादत में इस्तेकामत थी, और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए उन्होंने की। तो ये तीन चीज़ें हमने आपके सामने बयान की। आखिरी चीज़ है दुआ। जब भी इंसान कोई इबादत करता है, कुछ पढ़ता है, तो क्या होता है, आखिर में हम दुआ करते हैं। और दुआ, सरकार ने फरमाया, दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। हर इबादत के बाद तिलावत कुरान करें तो दुआ, नवाफिल पढ़ें तो दुआ, नमाज पढ़ें इसके बाद दुआ, वजीफ़ा पढ़ें तो इसके बाद दुआ, जो भी इबादत आप करें दुआ लाजमी है, वाजिब है, ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाथ फैलाएं और जो कुछ पढ़ा है उसकी कबूलियत के लिए दुआ मांगें, अपने कल्ब की सफाई के लिए दुआ मांगें, और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा मांगें। जब ये चीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला वो अपने हबीब पाक साहिब दौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में न सिर्फ ये कि उसे कबूल फरमाएगा, अपनी रहमतें बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। और जो कुछ आप उससे हासिल करना चाहते हैं, उस वजीफे से, उस इबादत से, यकीनन 100% आपको मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें हमने आपके सामने बयान की, बल्कि चार चीज़ें बयान की। सबसे पहले इबादत का मकसद, दूसरी इबादत में परहेज़, तीसरी इबादत में इस्तेकामत, और चौथी इबादत के बाद दुआ, कि हमें क्या दुआ करनी चाहिए। ये चार चीज़ें आपके सामने बयान की हैं। سالک پر لازم ہے کہ ان چاروں پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرے، اگر ان چاروں پر عمل نہیں ہوگا تو عبادات کا وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، تمام غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر رجوع اللہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، صرف اس کی رضا کی خاطر یہ اپنا مطمع نظر رکھیں، پھر عبادت کریں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہ مقدس مہینے رجب، شعبان، رمضان عن قریب ہم سب پر سایہ فکر ہونے والے ہیں، تو جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ان مقدس مہینوں میں عبادت و ریاضت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہ صرف یہ کہ عبادت کو قبول فرمائے گا بلکہ کتنی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔